अध्याय 21 एकांश लेखन आइटम राइटिंग। एकांश का अर्थ एवं विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइटम। किसी भी मनोवैज्ञानिक और या शैक्षिक परीक्षण को उत्तम कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसमें अच्छे अच्छे एकांश हों। पर एकांश है क्या? मनोमिति में एकांश से तात्पर्य एक ऐसे प्रश्न या पाठ से होता है जिनके विभाजन नहीं किए जा सकते। बीन 1953 ने इसी अर्थ में एकांश को परिभाषित करते हुए कहा है, कोट, एकांश एक ऐसा पाठ या प्रश्न होता है जिसे किसी छोटी इकाइयों में सामान्यतः तोड़ा नहीं जा सकता है, अनकोट। स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में एकांश का स्वरूप ही ऐसा होता है कि उसका आगे विभाजन या उप विभाजन संभव नहीं होता है। एकांश के रूप में कोई शाब्दिक पाठ या क्रियात्मक पाठ या अंकगणितीय पाठ आदि का प्रयोग किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। किसी भी एकांश को उत्तम कहलाने के लिए उसमें निम्न विशेषताओं का होना अनिवार्य जाना गया है। एक, एकांश को ना तो अधिक आसान और न ही अधिक कठिन होना चाहिए। एकांश की कठिनता स्तर मध्यम श्रेणी का होना चाहिए। दो, एकांशों को इस ढंग से लिखा जाना चाहिए कि परीक्षक तथा परीक्षार्थी किसी को भी इसका अर्थ समझने में दिक्कत नहीं हो या किसी के भी द्वारा इसका दोहरा अर्थ न निकाला जाए। तीन, एक उत्तम एकांश की विशेषता यह भी है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में विभेद शक्ति हो। दूसरे शब्दों में एकांश का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जिन व्यक्तियों में श्रेष्ठ गुण है तथा जिसमें श्रेष्ठ गुण की कमी है ने वह स्पष्ट विभेद कर दे। चार, एकांश का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान के सिर्फ महत्वपूर्ण पहलू का ही माप हो सके, इसका संबंध ज्ञान के तुच्छ पहलू से नहीं हो। पाँच, किसी भी एकांश को उत्तम कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह परीक्षार्थी में अटकलबाजी को बढ़ावा नहीं दे। छः, एक उत्तम एकांश की विशेषता यह भी है कि इसका सही उत्तर अन्य एकांशों की मदद से संभव न हो। दूसरे शब्दों में एक उत्तम एकांश का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसका उत्तर स्वतंत्र रूप से ही दिया जाना संभव हो। सात, एक उत्तम एकांश की विशेषता यह भी है कि उसे पढ़ने में परीक्षार्थी या परीक्षक को कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरे शब्दों में इसकी भाषा एवं इसमें प्रयुक्त सरल शब्द सरल हो, न कि अलंकृत हो। पैराग्राफ चेंज। यदि किसी एकांश में उपयुक्त विशेषताओं में से अधिक विशेषताएं होती हैं तो उसे एक उत्तम एकांश माना जाता है। पैराग्राफ चेंज। एकांश के प्रकार, टाइप्स ऑफ आइटम। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों एवं शैक्षिक परीक्षणों में जितने भी तरह के एकांशों को सम्मिलित किया जाता है उसे मूलतः निम्नांकित दो भागों में बांटा गया है। क, निबंधात्मक एकांश, ऐसे आइटम। ख, वस्तुनिष्ठ एकांश, ऑब्जेक्टिव आइटम। इन दोनों तरह के एकांशों का वर्णन निम्नांकित है। क, निबंधात्मक एकांश। निबंधात्मक एकांश वैसे एकांश को कहा जाता है जिसमें परीक्षार्थी या व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देने में अपनी स्मृति से प्राप्त अनुभूतियों एवं साहचर्यों को कुछ शब्दों या वाक्यों में खास ढंग से संगठित करता है। इस तरह के एकांशों का प्रयोग करने वाले परीक्षण को निबंधात्मक परीक्षण कहा जाता है। ऐसे एकांशों का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जहां शोधकर्ता का उद्देश्य व्यक्ति के आलोचनात्मक चिंतन, संगठनात्मक क्षमता, मौलिकता आदि का मापन करना होता है। पैराग्राफ चेंज। मार्शल एवं हेल्स ने निबंधात्मक एकांश के दो प्रकार बतलाए हैं, लघु निबंधात्मक एकांश तथा लंबा निबंधात्मक एकांश। लघु निबंधात्मक एकांश, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा एकांश होता है जिसका उत्तर देने के लिए परीक्षार्थी या उत्तरदाता को कुछ शब्द या लघु वाक्य लिखना पड़ता है। लंबा निबंधात्मक एकांश वैसे एकांश को कहा जाता है जिसका उत्तर देने के लिए परीक्षार्थी या उत्तरदाता को कई वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है। निबंधात्मक एकांश के उदाहरण इस प्रकार है, एक, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं। लघु निबंधात्मक एकांश का उदाहरण है, दो, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार का वर्णन करें। लंबा निबंधात्मक एकांश का उदाहरण है, आजकल निबंधात्मक एकांशों का प्रयोग शिक्षक द्वारा छात्रों की कक्षा उपलब्धि को मापने के लिए सफलतापूर्वक किया जा रहा है। पैराग्राफ चेंज। निबंधात्मक एकांश के कुछ गुण तथा अवगुण है। इसके प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। एक, निबंधात्मक एकांश का प्रमुख गुण यह है कि ऐसे एकांशों द्वारा उत्तरदाता अपनी गत अनुभूतियों एवं सहचर्यों को एक संगठित रूप दे पाने में असमर्थ हो पाता है। दो, ऐसे एकांशों को लिखना आसान होता है। तीन, निबंधात्मक एकांश द्वारा तात्विक सूचनाओं का मापन सही सही ढंग से होता है। पैराग्राफ चेंज, इन गुणों के बावजूद निबंधात्मक एकांश के कुछ अवगुण हैं जो निम्नांकित है। एक निबंधात्मक एकांश का सबसे बड़ा दोष यह बतलाया गया है कि इसका प्राप्तांक लेखन काफ़ी आत्मनिष्ठ होता है, इसके कारण इसमें विश्वसनीयता बहुत ही कम होती है। यह एक परीक्षक या प्राप्तांक लेखनकर्ता से दूसरे प्राप्तांक लेखनकर्ता तथा काफ़ी भिन्न हुआ करता है। दो, निबंधात्मक एकांश की अंकन प्रक्रिया में भी काफ़ी समय लगता है क्योंकि इसके उत्तर बाएँ उत्तर प्रायः लंबे होते हैं। तीन, निबंधात्मक एकांश द्वारा मूलतः व्यक्तियों की उन क्षमताओं का ही मापन होता है जो प्रत्यय की प्रक्रिया से संबंधित होती है, अतः ऐसे एकांशों का कार्य क्षेत्र सीमित होता है। चार, चूँकि निबंधात्मक एकांशों में उत्तरदाता को उत्तर देने में समय लगता है, अतः एक निश्चित समय सीमा के भीतर उत्तरदाता उतने निबंधात्मक एकांशों का उत्तर नहीं दे सकता है जितना कि वस्तुनिष्ठ एकांशों का उत्तर दे पाता है। वस्तुनिष्ठ एकांश, वस्तुनिष्ठ एकांश का स्वरूप आत्मनिष्ठ एकांश से भिन्न होता है। वस्तुनिष्ठ एकांश वैसे एकांश को कहा जाता है जिसका एक ही निश्चित उत्तर होता है, जिसे उत्तरदाता अपनी ओर से देता है या दिए गए कई उत्तरों में से चुनकर बतलाता है। इस व्याख्या से यह स्पष्ट है कि वस्तुनिष्ठ एकांश की तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं जो निम्नांकित हैं। एक, वस्तुनिष्ठ एकांश में एक निश्चित उत्तर होता है। दो, वस्तुनिष्ठ एकांश में प्रश्नों या एकांशों के उत्तर को उत्तरदाता या व्यक्ति दिए गए कई उत्तरों में से चुनकर बतलाता है। तीन, वस्तुनिष्ठ एकांश में प्रश्नों या एकांशों के उत्तर को कभी कभी उत्तरदाता अपनी ओर से भी आपूर्ति करता है। वस्तुनिष्ठ एकांश के मुख्य दो सामान्य प्रकार बतलाया गया है, क, आपूर्ति प्रकार का वस्तुनिष्ठ एकांश तथा ख, चयन प्रकार का वस्तुनिष्ठ एकांश। आपूर्ति प्रकार का वस्तुनिष्ठ एकांश वैसे एकांश को कहा जाता है जहां एकांशों के सही उत्तर को उत्तरदाता या व्यक्ति अपनी ओर से लिखता है। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है। एक, व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक का नाम J.B. वॉटसन है। दो, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह के आपूर्ति प्रकार के वस्तुनिष्ठ एकांश को पूर्ति एकांश भी कहा जाता है। अधिकतर शोध मनोवैज्ञानिकों की आम राय यह है कि पूर्ति एकांश में उतनी वस्तुनिष्ठता नहीं होती है जितनी कि अन्य वस्तुनिष्ठ एकांशों में होती है। वैसे एकांशों को चयन प्रकार का वस्तुनिष्ठ एकांश कहा जाता है जहां उत्तरदाता दिए गए कई उत्तरों में से एक सही उत्तर का चयन करके अपनी अनुक्रिया करता है। नन्ली 1970 ने ऐसे एकांशों को पहचान एकांश कहा है। जिस ऐसे एकांशों को मूल रूप से निम्नांकित तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक, द्विकल्पी एकांश, टू अल्टरनेटिव आइटम। दो, बहुविकल्पी एकांश, मल्टीपल चॉइस आइटम। तीन, मिलान एकांश, मैचिंग आइटम। इन तीनों तरह के एकांशों का उदाहरण सहित वर्णन इस प्रकार है। एक, द्विकल्पी एकांश। द्विकल्पी एकांश वैसे एकांश को कहा जाता है जिसके उत्तर के रूप में दो विकल्पी अल्टरनेटिव्स जैसे हाँ, नहीं, सही, गलत, सत्य, असत्य, सहमत, असहमत दिए रहते हैं और उत्तरदाता उनमें उस विकल्प पर टिक लगाते हैं जिसे वह उपयुक्त या सही समझता है। ऐसे एकांश के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। एक, क्या आपको अनिद्रा की शिकायत है। दो, भारत की विभिन्नता में एकता है। तीन, जहां कहीं भी हो घर की चिंता आपको सताती है। चार, श्री गुलजारी लाल नंदा भारत के राष्ट्रपति थे। द्विकल्पी एकांश का प्रयोग मूलतः व्यक्तित्व परीक्षणों में होता है या वैसे परीक्षणों में होता है जहां ऐसी सूचनाओं को इकट्ठा करना होता है जिसमें किसी विशेष वर्णन की जरूरत नहीं होती है। तारीख, तकनीकी पदों, शब्दावली से संबंधित सूचनाएं ऐसी ही होती हैं। ऐसे एकांशों की सबसे बड़ी परिसीमा यह बतलाया गया है कि इसमें सही उत्तर न जानने पर भी मात्र अटकलबाजी के आधार पर सही उत्तर ढूंढ निकालने की संभावना 50% होती है क्योंकि उत्तर में दो ही विकल्प होते हैं। दो, बहुविकल्पी एकांश, मल्टीपल चॉइस आइटम। बहुविकल्पी एकांश सबसे अधिक लोकप्रिय वस्तुनिष्ठ एकांश है। इस तरह के एकांशों में प्रत्येक प्रश्न या एकांश के कई उत्तर दिए रहते हैं जिनमें एक सही उत्तर होता है तथा बाकी गलत जो सही उत्तर के ही समान होते हैं। ऐसे गलत उत्तरों को आसेधक कहा जाता है। इसके उत्तर निम्नांकित हैं। एक, मनोविश्लेषण को एक संप्रदाय के रूप में किसने स्थापित किया था? अ फ्रॉयड, ब वॉटसन, ख टिचेनर, द कोहलर। दो, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? अ 1626 एडी, ब 1526 एडी, स 1256 एडी, द 1757 एडी। तीन, निम्नलिखित व्यक्तित्व परीक्षणों में कौन प्रक्षेपी परीक्षण प्रोजेक्टिव टेस्ट है? कैटल 16 पीएफ परीक्षण, ब रुशार्क परीक्षण, स एमएमपीआई, द आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर और ईपीक्यू। बहुविकल्पी एकांश का प्रयोग शोधकर्ताओं द्वारा व्यक्ति या उत्तरदाता के ज्ञान, शब्दावली, विश्लेषण, संश्लेषण, कारण परिणाम संबंध आदि से संबंधित क्षमताओं के मापन में किया जाता है। इस तरह के एकांशों का सबसे प्रमुख फायदा यह है कि इसके द्वारा संगठनात्मक क्षमता को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के शैक्षिक तथा निर्देशात्मक क्षमता की माप सफलतापूर्वक होती है। इस तरह के एकांश का एक लाभ यह भी बतलाया गया है कि अन्य दूसरे तरह के वस्तुनिष्ठ एकांशों की तुलना में इसे आसानी से सही ढंग से वस्तुनिष्ठ तरीके से अंकन किया जाता है। इन लाभों के बावजूद बहुविकल्पी एकांश के कुछ परिसीमाएं भी हैं जो निम्नांकित हैं। एक, ऐसे एकांशों द्वारा उत्तरदाता या व्यक्ति संगठनात्मक क्षमता या अपने आप को व्यक्तित्व अभिव्यक्त करने की क्षमता का मापन संभव नहीं है। दो, बहुविकल्पी एकांशों को लिखना या तैयार करना कठिन है क्योंकि ऐसे एकांशों को लिखने के लिए यह आवश्यक है कि एकांश लेखक को विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान हो। तीन, ऐसे एकांशों का उत्तर देने में उत्तरदाता को अन्य वस्तुनिष्ठ एकांशों की तुलना में काफ़ी अधिक समय लगता है। तीन, मिलान एकांश, ऐसे एकांशों में दो कॉलम होते हैं, एक दायां कॉलम तथा दूसरा बायां कॉलम। बायां कॉलम के शब्दों या वाक्यांशों को दायां कॉलम के शब्दों या वाक्यांशों के साथ सही ढंग से मिलाना होता है। इस तरह के एकांश का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। पैराग्राफ चेंज, नीचे बाईं तरफ कुछ सांख्यिकीय विधियों के नाम दिए गए हैं तथा दाईं ओर इन विधियों से संबंधित अनुसंधानकर्ता का नाम दिया गया है। सबसे बाईं ओर एक एक डैश रेखा खींची गई है जिस पर आप सांख्यिकीय विधियों से संबंधित अनुसंधानकर्ता के नाम के अक्षर क्रमांकों को लिख दें। मिलान एकांश का प्रयोग तारीख, घटना, नाम, चित्र आदि से संबंधित स्मृति क्षमता की जांच करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में मिलान एकांश का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसके द्वारा उन उपलब्धियों का मापन आसानी से होता है जिसमें सहचर्यात्मक सीखना सम्मिलित होता है। मिलान एकांशों की कुछ परिसीमाएँ या दोष भी बतलाए गए हैं जो निम्नांकित हैं। एक, मिलान एकांशों द्वारा संप्रत्यय के बारे में उत्तरदाता का ज्ञान कितना है इसका मापन सही नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसे एकांशों द्वारा मात्र तात्विक सहचर्यों का ही मापन होता है। दो, ऐसे एकांशों द्वारा उत्तरदाता की संगठनात्मक क्षमता ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी का मापन नहीं हो पाता है। तीन, ऐसे एकांशों में यदि उत्तरदाता एक युग्म को छोड़कर अन्य सभी युग्मों के सही उत्तरों को जानता है तो वह अंतिम युग्म का भी उत्तर छंटनी की प्रक्रिया द्वारा अपने आप ज्ञात कर लेता है। ऐसा सचमुच में नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रावधान यह होना चाहिए कि किसी प्रश्न का उत्तर उत्तरदाता अपने ज्ञान के आधार पर दे सके। चार, ऐसे एकांशों का उत्तर देने में उत्तरदाता को अधिक समय लगता है। पाँच, ऐसे एकांशों को तैयार करना भी शोधकर्ता या एकांश लेखक के लिए एक टेढ़ी खीर है। स्पष्ट हुआ कि मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोधों में जो परीक्षण का प्रयोग होता है उसमें दो तरह के ही एकांशों का उपयोग किया जाता है, आत्मनिष्ठ एकांश तथा वस्तुनिष्ठ एकांश। वस्तुनिष्ठ एकांश में बहुविकल्पी एकांशों पर आधारित मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की अधिकता पाई जाती है। एकांश लेखन के सामान्य निर्देश, जनरल गाइडलाइंस फॉर आइटम राइटिंग, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक परीक्षण में भिन्न भिन्न तरह के एकांशों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एकांश श्रेष्ठ हों या उत्तम गुण के हों इसके लिए यह आवश्यक है कि एकांश लेखक या शोधकर्ता कुछ निश्चित सामान्य निर्देश के अनुकूल काम करें। इन सामान्य निर्देशों में निम्नांकित अधिक महत्वपूर्ण बतलाया गया है। एक, एकांशों को स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए। एकांश की भाषा सरल हो तथा इसे निश्चित रूप से भाषा समझने की क्षमता की जांच करने वाला नहीं होना चाहिए। एकांश की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह स्पष्टतः श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा निम्न व्यक्तियों में अंतर कर सके। भाषा की स्पष्टता का ख्याल विशेषकर एकांश लेखक को वस्तुनिष्ठ एकांश के लिखने में अधिक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रत्येक एकांश द्वारा ज्ञान की एक पृथक इकाई का मापन होता है। ऐसे एकांशों में अस्पष्टता रह जाने से इसकी वैधता काफ़ी प्रभावित हो जाती है। दो, अक्रियात्मक शब्दों को एकांश में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों का एकांश की वैधता पर कुप्रभाव पड़ता है। प्रायः ऐसे अक्रियात्मक शब्दों का प्रयोग एकांश लेखक द्वारा वस्तुनिष्ठ एकांश के अस्येधक को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे अक्रियात्मक शब्दों का सही अनुक्रिया करने में कोई विशेष योगदान नहीं होता है। तीन, एकांश की कठिनता स्तर न तो अधिक और न ही कम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में एकांश न तो बहुत अधिक आसान और न ही बहुत अधिक कठिन होना चाहिए। इन दोनों तरह के एकांशों की वैधता कम होती है, अतः एकांश लेखक को चाहिए कि एकांश की कठिनता स्तर न अधिक और न कम बल्कि बीचों बीच का बनाकर रखे। चार, एकांश में असंगत परिशुद्धता को यथासंभव सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस ढंग की असंगत परिशुद्धता एकांश लेखक के अपरिपक्व चिंतन का द्योतक होता है, और इस तरह के एकांश से उत्तरदाता भी सही उत्तर का चयन करने में पेशोपेश में पड़ जाता है। पाँच, यथासंभव एकांश लेखक को चाहिए कि वह एकांशों में रूढ़िबद्ध शब्दों का प्रयोग न करे, क्योंकि इस तरह के शब्दों से वैसे उत्तरदाता को अनावश्यक रूप से सही उत्तर ढूंढने होते हैं। अतः उसे एकांश में देखते ही वे संभावित उत्तर को आसानी से, चाहे सही ज्ञान हो या न हो, ढूंढ लेता है। अतः ऐसे शब्दों का प्रयोग यथासंभव एकांश लेखक को नहीं करना चाहिए। छह, एकांश लेखक को असंगत संकेत से बचना चाहिए। कभी कभी एकांश लेखक उच्चारण में समानता करके शब्दों की आवाज़ों में समानता लाकर या उत्तर के आकार में वृद्धि करके सही उत्तर की दिशा में उत्तरदाता के लिए अनावश्यक संकेत छोड़ देता है। इसका परिणाम यह होता है कि उत्तरदाता सही उत्तर को अपने ज्ञान के आधार पर नहीं बल्कि इन असंगत संकेतों के आधार पर ढूंढ निकालते हैं। इससे एकांश की वैधता कम हो जाती है। सात, जब द्विकल्पी एकांश टू अल्टरनेटिव आइटम लिखा जा रहा हो तो वैसी परिस्थिति में विशिष्ट सूचक स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स जैसे कभी नहीं, हमेशा, सभी, कुछ भी नहीं आदि को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों से भी उत्तर के बारे में उत्तरदाता को अनावश्यक संकेत मिल जाता है। आठ, अंतर्बद्ध एकांशों को परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्बद्ध एकांश, इंटरलॉकिंग आइटम, वैसे एकांश को कहा जाता है जिसका सही उत्तर अन्य एकांशों से बिना संबंध स्थापित किए हुए नहीं दिया जा सकता है। ऐसे एकांशों द्वारा सभी उत्तरदाताओं को उत्तर देने का समान अवसर नहीं मिल पाता है। अंतर्बद्ध एकांश का एक उदाहरण इस प्रकार है। एक कोटि अंतर सह संबंध विधि दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने की विधि है। दो, इस विधि का प्रतिपादन फिशर द्वारा किया गया था, सही गलत। तीन, इस विधि का प्रयोग सिर्फ कोटि रैंक में उत्तर किए गए आंकड़ों के लिए होता है, सही या गलत। अब इस उदाहरण में एकांश दो तथा एकांश संख्या तीन का सही सही उत्तर दाता तभी दे सकता है जब वह एकांश संख्या एक का सही सही उत्तर जानता हो। अतः ये दोनों ही अंतर्बद्ध एकांश, इंटरलॉकिंग आइटम्स के उदाहरण हैं। ऐसे एकांशों का प्रयोग एकांश लेखक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे एकांश सभी उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए समान अवसर प्रदान नहीं करते हैं। पैराग्राफ चेंज। इस तरह से हम देखते हैं कि एक उत्तम एकांश लेखन के लिए शोधकर्ताओं ने कुछ विशेष निर्देश बना रखा है, जिसे यदि ठीक ढंग से पालन किया जाए तो उत्तम एकांश लेखन का कार्य सरल, सुगम एवं सुलभ हो सकता है। पैराग्राफ चेंज। निबंधात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का तुलनात्मक अध्ययन, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एसे टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जिस परीक्षण में निबंधात्मक एकांशों का प्रयोग होता है उसे निबंधात्मक परीक्षण कहा जाता है, तथा जिस परीक्षण में वस्तुनिष्ठ एकांशों का प्रयोग होता है उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहा जाता है। इन दोनों तरह के परीक्षणों में कुछ समानताएँ एवं विषमताएँ हैं जिन पर प्रकाश डालना अनिवार्य है। इन दोनों तरह के परीक्षणों में प्रमुख समानताएं निम्नांकित हैं। एक, निबंधात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण दोनों में ही आत्मनिष्ठता का तत्व सम्मिलित होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में एकांशों को लिखने में तथा परीक्षण की वैधता ज्ञात करने के ख्याल से किसी बाह्य कसौटी के चयन में आत्मनिष्ठता सम्मिलित होती है। आत्मनिष्ठ परीक्षण में एकांशों को लिखने तथा उसका चयन करने में आत्मनिष्ठता सम्मिलित होती है। स्पष्ट हुआ कि इन दोनों तरह के परीक्षणों में आत्मनिष्ठता का तत्व सम्मिलित होता है। दो, इन दोनों ही तरह के परीक्षणों में परीक्षक प्राप्तांकों की वस्तुनिष्ठ व्याख्या पर बल डाला जाता है। 3, किसी भी तरह के शैक्षिक ज्ञान को निबंधात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा आसानी से मापा जा सकता है। इन समानताओं के बावजूद इन दोनों तरह के परीक्षणों में कुछ विभिन्नताएं हैं जो निम्नांकित हैं। 1, निबंधात्मक परीक्षण में चिंतन थिंकिंग एवं लेखन महत्वपूर्ण होता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में चिंतन एवं पठन महत्वपूर्ण होता है। निबंधात्मक परीक्षण में व्यक्ति पूछे गए प्रश्नों पर ठीक ढंग से गहन रूप से सोचता है और फिर उससे संबंधित मन में आए विचारों को संगत ढंग से लिखता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में व्यक्ति प्रश्नों एवं एकांशों को पढ़ते जाता है और फिर सोचकर दिए हुए सही उत्तर पर टिक या अन्य कोई चिन्ह लगा देता है। 2, निबंधात्मक परीक्षण का विस्तार वस्तुनिष्ठ परीक्षण की तुलना में औसत होता है, चूँकि निबंधात्मक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या आमतौर पर 10 से 12 होती है। अतः चाहकर भी शोधकर्ता समग्र क्षेत्र से प्रश्न नहीं पूछ सकता है, परंतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण में चूंकि प्रश्नों की संख्या अधिक होती है अतः शोधकर्ता के लिए समग्र क्षेत्र से प्रश्नों का चयन करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। अतः इस परीक्षण का विस्तार स्वभावतः निबंधात्मक परीक्षण से बड़ा होता है। 3, उत्तरों का मूल्यांकन करने के आधार पर निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण की तुलना में अधिक वैज्ञानिक नहीं होते हैं। निबंधात्मक परीक्षण में उत्तरों का मूल्यांकन करने में आत्मनिष्ठता अधिक होती है, क्योंकि ऐसे परीक्षण का मूल्यांकन एक परीक्षक से दूसरे परीक्षक तथा कभी कभी एक ही परीक्षक द्वारा भिन्न भिन्न समयों में अलग अलग होता है, परंतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण के उत्तरों के मूल्यांकन में ऐसी बात नहीं होती है। ऐसे उत्तरों का मूल्यांकन किसी भी परिस्थिति में किसी भी परीक्षक द्वारा एक ही तरह का होता है। 4, निबंधात्मक परीक्षण में परीक्षक के पूर्वाग्रह एवं पक्षपात का विशेष महत्व होता है, जिसका उत्तरों के मूल्यांकन पर अधिक असर पड़ता है। परीक्षक ऐसे उत्तरों में पहले से ही एक अवधारणा बनाए हुए होते हैं कि उत्तर का प्रारंभ एवं अंत एक खास तरह का होना चाहिए तथा इसकी उसकी भाषा शैली तथ्यों का प्रस्तुतिकरण एवं संगठन निश्चित ढंग का होना चाहिए आदि आदि परंतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण में ऐसी कोई बात नहीं होती है और परीक्षक इन बातों के बारे में कभी सोचता भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को यहाँ कुछ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 5, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का स्वरूप क्यों ना हो, व्यक्ति या उत्तरदाता उसमें अटकलबाजी के आधार पर कुछ न कुछ सही उत्तर ढूंढी निकाल पाते हैं। निबंधात्मक परीक्षण में इस ढंग की अटकलबाजी तो नहीं चल पाती है, परंतु कभी कभी उत्तरदाता आंख में धूल झोंककर निकल जाने की कोशिश अवश्य करते हैं। अक्सर देखा गया है कि निबंधात्मक परीक्षण के किसी प्रश्न का उत्तर जब छात्र सही सही नहीं जानते हैं तो वे अनाव सनाव कुछ भी लेकर उसे आकर्षक भाषा रूपी चादर में लपेट देते हैं। इसका परिणाम कभी कभी यह होता है कि परीक्षक छात्र को तीव्र बुद्धि का समझकर एवं दिए गए उत्तर को एक उत्तम उत्तर समझकर अच्छा अंक देने की भूल कर बैठते हैं। 6, निबंधात्मक परीक्षण में छात्रों की संगठनात्मक क्षमता ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी मनोवृत्ति एवं अभिरुचि आदि का पता आसानी से लग जाता है, परंतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण में उत्तरदाताओं के इन सब पहलुओं की भनक तक नहीं मिल पाती है। 7, निबंधात्मक परीक्षण में उत्तरदाता प्रश्नों का उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में लिखते हैं। उत्तरदाता अपने मन से तथ्यों का प्रत्याहार करके उसे अपनी इच्छा अनुसार तथ्यों को संगठित करते हैं, जिससे उनकी अपनी कुशलता दिखाने का अच्छा मौका मिलता है। परंतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ उत्तरदाता को कुछ लिखने की आवश्यकता होती ही नहीं है। उसे सिर्फ दिए गए उत्तरों में से किसी एक का चयन करके ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है। 8, निबंधात्मक परीक्षण का संचालन तथा उसके प्रश्नों का निर्माण करना शोधकर्ताओं के लिए आसान, कम श्रम एवं समय लेने वाला होता है, परंतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रश्नों को निर्मित करना शोधकर्ता के लिए एक टेढ़ी खीर है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इनका निर्माण सभी शोधकर्ता नहीं कर पाते हैं, बल्कि अनुभव प्राप्त शोधकर्ता ही कर पाते हैं। 9, मोटे तौर पर निबंधात्मक परीक्षण एक तरह का प्रत्याहन परीक्षण है, क्योंकि उत्तरदाता अपने पूर्व सीखी गई अनुभूतियों एवं सहचर्यों को उनके मूल स्रोत की अनुपस्थिति में ही चेतना में लाता है, परंतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण में पूर्ति परीक्षण को छोड़कर उत्तरदाता को दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर की पहचान करनी पड़ती है। अतः वस्तुनिष्ठ परीक्षण मूलतः एक तरह का पहचान परीक्षण है। 10. निबंधात्मक परीक्षण में छात्रों की लेखन गति अभ्यास के कारण बढ़ जाती है, परंतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण में लेखन अभ्यास न होने से छात्रों की लेखन गति बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पैराग्राफ चेंज, स्पष्ट हुआ कि निबंधात्मक परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कुछ समानता होते हुए भी काफ़ी भिन्नता है।